जय राधमाधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा व्रजमंडल परिक्रमा के दौरान दामोदर लीला बताते हुए 24 नवंबर 2015 में रमण रेती गोकुल में दिया गया।
गोपी जन बाला भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णा, तो आपके स्थान में हो अभी, स्थान का नाम क्या है? और कहा जाता है कि ये रमन रेती स्थान है, यहाँ भगवान अपने भाई बालराम के साथ क्या करते थे? अपनी लीला प्रकट करते थे। भगवान इस स्थान में खेलते थे अपने भाई और मित्रों के साथ। और यहाँ पहुँचने से पहले आप लोग रास्ते में गए थे उस स्थान पर जहाँ भगवान को बांधा था, वो यमुना पेड़ भी उधर ही थे ना, वो कल से बांधा था। और यमुना अर्जुन के पेड़ भी थे, पेड़ आपको दिखे नहीं दिखे? नहीं देखे, वहाँ यमुना अर्जुन के पेड़ भी थे। तो ये कथा आप भागवतम के 10वें स्कंद में प्राप्त करते हो। जैसे आप जानते हो यशोदा माता को बकायदा शिकायत आती थी, क्या शिकायत? कि आपका बेटा, कि आपका बेटा हमारे घर में आकर क्या करता है? मक्खन चुराता है। कोई कभी पकड़ नहीं पाया भगवान को। एक समय एक गोपी ने कहा, एक गोपी जल्दी लौट गई थी और भगवान के घर में मक्खन चुरा रहे थे, तो गोपी ने पकड़ लिया भगवान को और कहा, हाँ मैं ले जाऊंगी तुम्हारी माँ के पास। तुम्हारी माँ हमेशा कहती है कि कोई प्रमाण है क्या, मेरा बेटा आपके घर में मक्खन चुरा रहा था। तो भगवान के हाथों को पकड़ कर ले जा रही थी, हाँ यशोदा माता के पास, और भगवान के पीछे था इस गोपी का बेटा। तो भगवान जब यशोदा माता के पास पहुंची है गोपी, उसने कहा, तुम बार बार कहते हो प्रमाण लाओ प्रमाण लाओ, आज मैं प्रमाण ले आई हूँ। देखो तुम्हारे बेटे को चोरी करते मक्खन चुराते हुए मैंने खुद आंखों से पकड़ा, ये देखो तुम्हारा बेटा मेरे हाथों में है। माँ ने, यशोदा माता ने कहा, मेरा बेटा तो अंदर खा रहा है मक्खन, ये तो आपका बेटा है। क्योंकि जब वो अपने बेटे को भगवान को खींच कर ला रही थी, तो भगवान ने क्या किया, बड़े चापलूसी के साथ अपना हाथ निकाल लिया और अपने उनके गोपी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया वो माँ को। तो इस प्रकार भगवान को कोई कभी पकड़ नहीं सका। भगवान के अनेक नामों में एक नाम है मक्खन चोर। तो यशोदा माता ने सोचा कि मेरा बेटा इतना शरारती है, पहले तो उनके पीछे भागी थी लाठी के साथ। फिर माता ने कहा, सोचा अगर मैं बांध, अगर लाठी से मारूंगी शायद बेटा घर से भाग जाएगा, तो मैं उसको बांधती हूँ। तो पहले तो बांधने का प्रयास किया एक रस्सी के साथ, कई रस्सियों को जोड़ा, पर कई रस्सियों को जोड़ा जब भी बांध नहीं पाए। सारी गोपियां हंस रही थी, यशोदा माता के ऊपर, ये छोटे बेटे को रस्सी से भी बांध नहीं सकती। भगवान ने देखा माँ के शरीर से पसीना आ रहा है, माँ भगवान ने उन्हें बांधने दिया। और जैसे हम कल कह रहे थे कि दो उंगलियों का भाव क्या है, एक उंगली का अर्थ है कि अगर आप प्रयास करोगे तो ही भगवान को प्राप्त कर सकोगे। ये मत सोचेगा प्रयास किए बिना भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और प्रयास करोगे तो फिर भगवान को समझ पाओगे। तो भगवान को बांध दिया था उस उखल के साथ, उखल तो आपने देखा। तो भागवतम के 10वें स्कंद में आप यमुना अर्जुन की कथा पढ़ते हो। परीक्षित महाराज ने 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, ये बताओ कि महान संत नारद मुनि ने क्यों नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दिया। नारद मुनि तो बड़े दयालु हैं और संत महात्मा अक्सर दयालु होते हैं। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था, क्या कारण है कि नारद मुनि जैसे महान संत क्रोधित हो गया कुबेर के दो पुत्रों के ऊपर, उन्हें श्राप दे दी। क्या श्राप दी? कि तुम पेड़ बन जाओगे। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कुबेर, कुबेर को आप जानते हो सब, कौन है कुबेर? हाँ, देवताओं के खजांची, अत्यंत धनी। वैसे तो आप भौतिक समाज में भी देखते हो धनी खानदान के बच्चे जल्दी बिगड़ जाते हैं। ये नहीं कि गरीब खानदान के बच्चे नहीं बिगड़ते, तो अमीरों के घरों में ज्यादा बुरी आदतें देखते हो आप। तो कुबेर के जो दो बेटे थे नंद कुबेर और मणिग्रीव, उन्हें ये सुविधा प्राप्त हो गई थी कि वो कैलाश पर्वत में जहाँ शिव जी है वहाँ निवास कर सके। और वैसे तो मानसी गंगा में हम जाते हैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, पर क्योंकि उन्हें ये खास वर प्राप्त हुआ था, देवताओं की उपासना से इंद्र तृप्ति के वर भी प्राप्त हो जाते हैं, तो उन्हें ये वर प्राप्त हुआ था। और एक समय वो स्त्रियों के साथ थे और वरुणी शराब के नशे में थे। अचानक वहां नारद मुनि पहुंच गए। और जब महान संत नारद मुनि पहुंचे, जो गोपियां जो औरतें थी उन्होंने तो पहचान लिया कि महान संत आया है, हमें हमारे शरीर को ढक लेना चाहिए। पर कुबेर के जो दो बेटे थे नंद कुबेर और मणिग्रीव, वो इतने गहरे नशे में थे कि वो पहचान नहीं पाए यह महान संत खड़ा है और हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जब नारद मुनि ने देखा कि कुबेर के बेटे इतने गहरे नशे में हैं या माया में हैं, तो उन्होंने सोचा कि उनका उद्धार किया जाए। साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र काया, दावा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि आया। चैतन्य चैतन्यमिदं नाम के ग्रंथ में कहा गया है, अगर एक पल के लिए भी आपको शुद्ध साधु की संगत मिले तो आपका जीवन सुधर सकता है। तो कुबेर के बेटों को महान संत नारद मुनि की संगत प्राप्त हुई है। और नारद मुनि ने क्या देखा? देखा कि कुबेर के बेटे कितने गहराई के साथ माया में हैं, तो उन्होंने सोचा कि मुझे इनका उद्धार करने दो। जो संत है अगर वो किसी को डांटे भी तो वो डांटता है दूसरे व्यक्ति के भलाई के लिए। अक्सर बौद्धिक समाज में हम चाहते नहीं है कोई हमें करेक्ट करे, कोई हमें सुधारे, कोई कहे ये तुम गलत कर रहे हो। और अगर कोई कहे तो हम क्या कहते हैं, वो तो एनवीएस है, जेलस है, ईर्ष्या द्वेष है। पर जो संत है अगर वो डांटता भी है तो वो डांटता है भक्त की भलाई के लिए। प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा करते हैं इस अध्याय के तात्पर्य में। तो नारद मुनि ने देखा कि कुबेर के बेटे बहुत गहरी माया में हैं, और नारद मुनि ने कहा धन का अगर दुरुपयोग जब होता है तो हम गलत कामों में जुड़ जाते हैं। तो नारद मुनि ने सोचा इनका उद्धार मुझे करने दो। नारद मुनि ने श्राप दी। क्या श्राप दी? ये श्राप दी क्या 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 कौन बताएगा? ये श्राप दी कि आप पेड़ बन जाओगे, एक दो दिन के लिए नहीं, देवताओं के 100 वर्षों के लिए। हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे बराबर हैं, तो अंदाजा लगाओ कितने लंबे हजारों सालों के लिए पेड़ बन जाओ। पर पेड़ कहाँ? बॉम्बे में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, कहाँ 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 पेड़ कहाँ बनो? नंद महाराज के आंगन में। अगर आपको ये श्राप दी जाए नंद महाराज के आंगन में पेड़ बन जाओ, आप स्वीकार करोगे? सच्ची खुशी से, जैसे हमारे कृष्ण बालराम मंदिर में एक तवाल का पेड़ है। है तो पेड़, चेतना कम है, पर अत्यंत भाग्यशाली पेड़ है। सारा दिन राधा श्याम सुंदर का दर्शन लेता है। आप 2 मिनट दर्शन लेते हो और भागने की कोशिश करते हो। सारा हर आरती में वो उपस्थित रहता है। सारा दिन 24 घंटे कीर्तन सुनता है, तो अत्यंत सौभाग्यशाली। तो नारद मुनि ने श्राप दिया तुम 2 पेड़ बन जाओ देवताओं के 100 वर्ष के लिए। इसके साथ नारद मुनि ने उन्हें एक खास वर भी दिया, बेनिडिक्शन। वर क्या था कौन बताएगा? क्या वर था? कि आपको 100 सालों के पश्चात भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। ये कोई छोटा वर है? तो भगवान को बांधा हुआ था उखल के साथ। भगवान अपने भक्तों के वचनों का पालन करते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को अनेक प्रकार के वर दिए थे, जिसके कारण हिरण्यकशिपु सोचने लगे आप तो मुझे मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर भगवान ने नारद मुनि के, ब्रह्मा जी के सारे वरों का पालन करते हुए भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव के रूप में और हिरण्यकशिपु का वध किया। और वध करने के पश्चात भगवान ने कहा ब्रह्मा आगे ऐसे वर मत देना, तुमने मेरा कार्य बहुत कठिन बना दिया था। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के सारे वरों का पालन किया। तो भगवान को बांधा हुआ था उखल के साथ। भगवान को पता था उनके प्रिय भक्त नारद मुनि ने ये वर दिया है कि देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात ये उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। भगवान ने क्या किया? अपने उखल को खींचा, 2 पेड़ों के बीच में फंसा दिया और फिर आगे खींचा उखल को। और जब उखल को खींचा तो क्या हुआ? क्या हुआ? 2 बड़े पेड़ गिर गए। और जब ये 2 पेड़ गिरे, ये 2 पेड़ों से निकले नंदकुमार और मानिकी। जब वो 2 पेड़ गिरे उन्होंने बहुत भारी आवाज की, बहुत भारी आवाज। उस समय यशोदा माता रसोई में थी और यशोदा माता ने पेड़ों को गिरते हुए देखा, सुना तो भागे भागे आई। देखा कि उनका बेटा वहां है और एक आधे इंच दूर पर दो बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं। तो माता ने पूछा ग्वालों से, ये पेड़ कैसे गिरे? ग्वालों ने कहा, ये पेड़ आपके बेटे ने गिराए। ये कैसे संभव हो सकता है? मेरा छोटा बच्चा इतने बड़े दो पेड़ों को गिराएगा? तुम लोग झूठ बोल रहे हो। जरूर आंधी आई होगी या मेरे पति ने इन्हें गिराया होगा। ग्वालों ने कहा, नहीं नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा, भगवान ने उखल को खींच कर दो पेड़ों के बीच फंसा कर इनको गिराया। यशोदा माता विचलित हो गई थी, कैसे संभव है मेरा छोटा बेटा दो पेड़ों को गिराए? तो फिर भगवान से कहने लगी, देखो नारायण की कृपा, मेरा बेटा बच गया। अब ये दो पेड़ भगवान पर गिरते तो भगवान का जीवन समाप्त हो जाता, पर भगवान को मेरा बेटा बच गया। तो जब ये दो ननकौर मणिग्री निकले पेड़ों से, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि नारद मुनि की असीम कृपा से हमें आज आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। नारद मुनि ने उन्हें सजा दी थी, श्राप दिया था, प्रसाद में वर भी दिया था। तो गुरु की कृपा से, प्रमाणिक गुरु की कृपा से हमें भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। प्रमाणिक गुरु के विषय में उपदेश अमृत में कहा गया है, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम इतार जीव वेगम उदार अपस्थ वेगम, जिसका मन बुद्धि इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए। तो नारद नलकुबेर और मणिग्रीव ने बड़े सुंदर स्तुतियों में भगवान का गुणगान किया, नारद मुनि का गुणगान किया और कहा कि नारद मुनि की असीम कृपा से उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है? भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। और उसके पश्चात उन्होंने एक बड़े सुंदर स्थिति स्तुति में ऐसे कहा, आप सुनना चाहते हो? मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर आपको हिंदी में समझा दूंगा। हैंस फॉरवर्ड may all our words describe your pastimes. May our ears engage in oral reception of your glories. May our hands, legs and other senses engage in actions pleasing to you. And may our minds always think of your lotus feet. May our heads offer our obeisances to everything within this world. Because all things are also your different forms. May our eyes see the forms of Vaishnavas who are non-different from you. So, Kuber ke jo do bete the, Nalak Kuber aur Manigreev, pehle to unhone galti kar di thi. Itne nashe mein the ki bhool gaye the sant ko kaise aadar dena chahiye. Par Narada Muni ki kripa se unka bhav itna shuddh ho gaya ki unhone kaha stuti mein आपसे। तो दूसरे शब्दों में, आरंभ में हम अज्ञानता में रहते हैं, तो गुरु साधु शास्त्र के सहयोग से हमें असली ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो कहते हैं, आपसे हमारी वाणी द्वारा सदा हम आपका गुणगान करें। तो भगवान ने ये जीभ दी है, जीभ किस लिए दी है? गुणगान करने के लिए या प्रजल्प करने के लिए? गुणगान करोगे तो भक्ति में आगे बढ़ोगे, प्रजल्पा करोगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो कहते हैं अब से हमारा यह वाणी सदा आपका गुणगान करे और हमारे जो कान हैं वो सदा आपका गुणगान सुने। जीभ के द्वारा भगवान का गुणगान करोगे तो कानों के द्वारा भी भगवान का गुणगान सुनोगे। जीभ के द्वारा भौतिक चर्चा करोगे तो कानों के द्वारा भाई वही सुनोगे। तो कहते हैं, आपसे सदा हमारी वाणी आपका गुणगान करे और हमारे कान सदा आपका गुणगान सुने। हमारे हाथ पैर और अनेक इंद्रियां सदा आपकी सेवा में जुड़े रहे। जैसे आप अमरीश महाराज का उदाहरण देखते हो, कैसे उन्होंने अपने पैरों का उपयोग किया भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए, हाथों का उपयोग किया भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए, अपने सिर का उपयोग किया भगवान के सामने झुकाने के लिए। तो कहते हैं हमारा हाथ पांव और अनेक इंद्रियां सदा आपकी सेवा में रहें। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। और आगे कहते हैं, और हमारा मन जो है सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करें। भागवत गीता के छठे अध्याय में भगवान कहते हैं मन को बंधु बनाओ शत्रु नहीं। जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया उसके लिए मन बंधु है, जो वश में नहीं कर रहे उसके लिए मन शत्रु है। तो कहते हैं मेरा मन सदा आपका स्मरण करे। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, मन मना बाबा मत भक्तो माध्या जी माम नमस्कारो। आगे कहते हैं हमारा जो सिर है सदा सब वैष्णव को प्रणाम करें। हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए हम केवल भगवान को प्रणाम करेंगे और गुरु को प्रणाम करेंगे, बाकी संतों की हमें कोई परवाह नहीं। भक्त का भाव होना चाहिए सब वैष्णव की सेवा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हरि नाम का उच्चारण और भक्तों के गुणों को देखो, कमजोरियों को नहीं। अक्सर हम लोग कमियों को देखते हैं पहले, गुणों को बाद में, है ना। पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्तों के गुणों को देखो, कमियों को देखोगे तो अपनी भक्ति को और कमजोर बनाओगे। तो कहते हैं कि हम सदा हमारा सिर सब वैष्णव को प्रणाम करें। तो हाँ, ये सारे वैष्णव वैष्णवियों सबको हमें आदर देना चाहिए, ये नहीं केवल गुरु और भगवान को। और हमारे जो नेत्र हैं सदा वैष्णव का दर्शन करें जो कि आपसे अभिन्न है। तो इस प्रकार नंद कुमार मणिग्रीव ने अपना भाव प्रकट किया। और आगे नंद महाराज ने जब देखा कि भगवान को उखल के साथ बांधा हुआ है तो उन्होंने पूछा किसने बांधा, फिर उनको पता लगा उनकी पत्नी ने बांधा। फिर नंद महाराज ने वो गांठ खोल दी और भगवान को मुक्त कर दिया। तो जो संदेश नंद कुंवर मणिग्रीव दे रहे हैं वो संदेश का हमें भी पालन करना चाहिए, और ये संदेश है हम सब के लिए। और ब्रजमंडल परिक्रमा में जैसे आए आपका सौभाग्य है आप उन स्थानों की यात्रा करते हो, उन स्थानों पर जाते हो जहाँ भगवान ने अपने दिव्य लीला प्रकट की। तो मुझे कहा गया था यहाँ आते समय कि वो स्थान था यहाँ के भगवान की एक और लीला बीती थी, वो थी फल बेचने वाले की। हाँ, आप भागवत में पढ़ते हो एक समय एक औरत फल बेच रही थी, भगवान उन दिनों में एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त हो रही थी। भगवान गए थे अपने हाथों में थोड़ा अन्न लेकर वो फल को खरीदने के लिए, पर सब उनके हाथ से गिर गया। जब भी उस औरत ने भगवान को फल दे दिए, जब मुड़ के देखा तो क्या देखा, टोकरी में क्या थे, सोने के फल। भगवान की सेवा करके कोई कभी गरीब नहीं होता। तो वो लीला भी बिल्कुल पड़ोस के स्थान में बीती थी। तो ये लीला का स्मरण कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.